रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। ओके चले काम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اے اللہ ہم آپ سے حق کی پہچان مانگتے ہیں جیسا کہ وہ واقعی ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مانگتے ہیں اور باطل کی پہچان مانگتے ہیں جیسا کہ وہ واقعی ہے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ جو آج کا عنوان ہے جیسا آپ کو واٹس ایپ میسج میں لکھا تھا، اس سے پہلے ذرا ایک نظر ہم فہرست عنوانات پر ڈال لیں، ٹیبل آف کانٹینٹس جو والیوم ون کے ہیں، تاکہ ہم ذرا اپنے آپ کو پلیس کر سکیں کہ ہم اس کتاب کے اندر کہاں ہیں، کتنا کر چکے ہیں، اور آگے کبھی کچھ اندازہ ہو جائے کہ اور کیا کرنا ہے۔ تو فہرست عنوانات جو پیج نمبر 6 سے شروع ہوتے ہیں، اس کے ان میں سب سے پہلے مقدمہ وغیرہ پڑھنے کے بعد کتاب الایمان والعقائد، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھے پچھلے ٹرم کے اندر۔ عقیدوں کا بیان پڑھا کہ جو امپورٹنٹ ترین عقائد ہیں کائنات سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے متعلق، یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں کلاس کے اندر۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک فصل تھی، یعنی ایک سیکشن جس میں کہ کفر اور شرک کی باتوں کا بیان تھا، بدعتوں، بری رسموں، بری باتوں کا بیان، اور حضرت نے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کیا تھا جو رسمیں اس زمانے میں، یعنی حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں موجود تھیں، آج بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اور جن علماء کرام نے تسہیل کو مرتب کیا ہے، یعنی اس ورژن کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کے اندر آج کے دور کی جو نئی بدعات وغیرہ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھی تھیں، اور اسی میں پھر کتاب الرسوم والبدعات، اس میں بدعت کی تعریف پڑھی کہ جی لفظی طور پر بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور شرعی تعریف کیا ہوتی ہے بدعت کی، اور شرعی تعریف اور لغوی تعریف کے درمیان فرق جو ہوتا ہے، تو اس کو پھر ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ پھر اس میں شرکیہ بدعات، یعنی ایسی بدعات جو کہ شرک کے لیول تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس کے بعد اعمال سے متعلق بدعات، یعنی نماز سے متعلق بدعات، وفات اور قبروں سے متعلق بدعات، پیدائش اور ختنہ وغیرہ سے متعلق بدعات، یہ سب بھی ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن کریم سے متعلق بدعات، شادی بیاہ سے متعلق رسوم اور بدعات، اور متفرق بدعات جیسے میلاد اور رجب کے کنڈے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہم نے اس میں پڑھ لی تھیں، اور یہ سب ہم پچھلے ٹرم میں پڑھ چکے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پھر اسی ورژن سے دوسری سیکشن بھی پڑھے تھے، نماز سے متعلق جو چیپٹر تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں پڑھی تھیں، طہارت کی باتیں جو تھیں وہ ہم نے کور کر لی ہیں۔ پھر اس ٹرم میں ہم نے، یعنی اس ٹرم سے مراد 2017 میں جو ہم نے اپنی کلاس دوبارہ شروع کری عید الاضحیٰ کے بعد، تو اس میں پھر ہم نے پہلے تو 30ویں پارے کے کچھ صورتیں پڑھیں، ترجمات اور لفظی تحقیق اور تشریح وغیرہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے زاد الطالبین سے کافی حدیثیں پڑھیں بہت تفصیلی تشریح وغیرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان سب کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو آپ لوگوں نے جو اگر مس کر دی ہوں تو وہ سننے کی کوشش کریں، اور وہ آپ یعنی بڑی آسانی سے کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لنکس بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ ویب پیج کا ایڈریس بھی آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب تسہیل بہشتی زیور دوبارہ شروع کری اس ٹرم کے اندر، تو ہم نے کتاب و ترغیب و ترہیب سے شروع کیا، جس کے اندر یعنی نیک اعمال کے فضائل اور ترغیبی جو باتیں حدیث مبارکہ میں آتی ہیں وہ ساری ہم نے ڈسکس کریں اس اعمال صالحہ کی ترغیب والے سیکشن کے تحت، اور اسی طرح ترہیب یعنی برے کاموں سے بچنے کی ترغیب جس کو کہ ترہیب کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ہم نے مکمل پڑھی۔ پھر قیامت کے دن کا حساب و کتاب، ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہم کور کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان کے شعبے، کتاب الآداب والاخلاق میں ہم نے ایمان کے شعبے پڑھے، ठीक है, यानी किताब अल आदाब वल अखलाक शुरू नहीं करी है। तो ये सारी बातें जो है वो हमने यानी इस नियत के साथ पढ़ी कि चूंकि हमारा ये कोर्स है, ये दीन एसेंशियल्स के नाम का कोर्स है, यानी ज़रूरियात दीन। ठीक है, जो जो चीज़ें ज़रूरियात में आती हैं। अब ज़रूरियात से हम यहाँ पर मुराद ये ले रहे हैं कि ठीक है, यानी हम ये मुराद ले रहे हैं, यानी कि कोई जो चीज़ हम नहीं कवर करेंगे वो ज़रूरत नहीं है उसकी, बल्कि ज़रूरियात से मुराद हम ले रहे हैं वो चीज़ें कि जिनके ना होने की वजह से ना नफ्स ईमान पर असर पड़ता है। नफ्स ईमान यानी इंसान का ईमान जायल हो सकता है, ठीक है, ईमान खराब बल्कि जायल हो सकता है। इसको कहेंगे नफ्स ईमान, नफ्स नफ्स ईमान, राइट, द एसेंस ऑफ ईमान। और दूसरी चीज हमने क्या इसमें अपने जहन में बना के रखी है कि हम कवर करेंगे कि जिन चीजों से सेहत ईमान पे फर्क पड़ता है। सेहत ईमान का मतलब क्या होता है कि ईमान तो है लेकिन ईमान बीमार हो जाता है, ठीक है, जब आप वो वाले काम करते हैं जिनको कि हम गुनाह कहते हैं। तो ये गुनाह जो है वो अकायद के लेवल के गुनाह हो या ये कि आमाल के लेवल के गुनाह हो, तो इन सब से जो है वो ईमान की सेहत पर फर्क पड़ता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को इस क्लास या इस कोर्स के अंदर कवर करें। अलबत्ता किताबुल आदाब वल इखलाक, ठीक है, ये जो चीज़ है ये अभी अभी कवर करने का इरादा नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह भी ये है कि ये नफ्स ईमान और सेहत ईमान के ऊपर डायरेक्टली असर नहीं करती बल्कि इनडायरेक्टली असर करती हैं, ठीक है, इनका जो इफेक्ट होता है तो वो इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। किस तरह से इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, वो इस तरह से होता है कि जो फराइज और वाजिबात हैं, ठीक है, तो वो जो है वो आदाब के बाउंड्रीज में रहते हैं, ठीक है, आदाब का एक हिसार होता है उनके गिर्द, एक फसील होती है आदाब की फराइज और वाजिबात के गिर्द, ठीक है। तो फराइज और वाजिबात जो है ना वो गोया उनकी हिफाजत में रहते हैं। क्या मतलब इसका कि जब इंसान आदाब की भी रियायत करता है और इखलाक की रियायत करता है तो उससे उसके जो फराइज और वाजिबात हैं वो महफूज हो जाते हैं, और जो शख्स आदाब और इखलाकियात की रियायत नहीं करता अपनी जिंदगी के अंदर तो शैतान जो होता है वो फिर डायरेक्टली उसके फराइज और वाजिबात के ऊपर असर अंदाज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है फसील के तौर पर काम देते हैं। तो इनको फिर हम अभी एटलीस्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें अभी बाकी हैं किताब के अंदर जो कि नफ्स ईमान और सेहत ईमान के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं, ठीक है। तो उनको हम एटलीस्ट पहले मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर अगर हमारे पास वक्त बचा, मजीद टर्म में कुछ टाइम रह गया, तो फिर हम इनको भी इंशाल्लाह देखेंगे। इसी के तहत जो है वो इखलाक व आदात नबविया यानी शमाइले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तो वो भी इसी तहत फिर हम फिलहाल स्टडी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे अलबत्ता गुजारिश ये है कि ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं होती हैं, ठीक है, तो आप अपने सेल्फ मुताले में इन बातों को रखें और इनको आप अपने तौर पर ज़रूर से स्टडी कर लें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, चंद पेजेस ही हैं, तो अपने तौर पर इन आदाब वगैरह को पढ़ लें। अगर कोई बात पूछने की हो तो आप अलग से पूछ लें, ठीक है, या क्लास में ही किसी में आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो अब किताबु सुलूक वल एहसान से शुरू करेंगे, ठीक है, किताबु सुलूक वल एहसान ये आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो पेज नंबर 134 के ऊपर वॉल्यूम 1 में ये है, और इसमें इबारत इसकी पढ़ने से पहले बस क्विकली ये जो अल्फाज हैं सुलूक और एहसान का क्या मतलब है, ठीक है, इनको क्विकली ज़रा एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये कि असलूक किस चीज़ को कहते हैं और अल एहसान किस चीज़ को कहते हैं। तो सुलूक का जो लफ्ज़ है ये निकला सलका यसलुकू सुलूकन, ठीक है, हम तो चूंकि जब सर्फ पढ़ लेते हैं ना, कॉन्जुगेशन, अरबिक कॉन्जुगेशन जिसको सर्फ कहते हैं, जब आप पढ़ लेते हैं ना तो फिर एक सर्फ का तालिब इल्म जो होता है फिर वो हर लफ्ज के ऊपर एक सर्फ बनाता है, ठीक है, एक टेबल बनाता है सर्फ सगीर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाई है नसरा यंसुरु नसरन फहुआ नासिरुन और वरबा यदरबु दरबन फहुआ वारिबुन, ठीक है, वो सब सब क्या थी, वो सर्फ सगीरें थी, ठीक है। तो एक सर्फ का तालिब जो है ना फिर हर लफ्ज को ही फिर सर्फ के तौर पर की नजर से देखता है। इसी वजह से सुलूक क्या है, ये सुलूक जो है वो इसम मस्दर है, ठीक है, एक आईएनजी फॉर्म है या एक रूट वर्ड है, और इसका माजी और मुजारे क्या होता है, सलका यसलुकू, ठीक है, सलका का मतलब है वो चला, ठीक है, वो चला किसी रास्ते पर, और यसलुकू वो चलता है, मुजारे का सीगा है ये, और सुलूक का मतलब होता है चलना, ठीक है, तो सुलूक का लफ्जी मतलब होता है चलना, लेकिन इस्तिलाही मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने वाले रास्ते के ऊपर चलना, इसको सुलूक कहते हैं, ठीक है। और एहसान क्या चीज होती है, एहसान की तारीफ सब करने के लिए सबसे बेहतरीन हदीस जिब्राइल, जो कि मशहूर हदीस है कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि एक आदमी आए जिनको किसी ने पहले नहीं देखा था, ठीक है, मदीना मुनव्वरा के लोग उनसे वाकिफ नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही साफ सुथरे शफाफ लिबास में थे और बहुत ही अच्छे उनके उनके उनका पूरा गेटअप था, जिससे पता लग रहा था कि ये अभी सफर करके मदीना मुनव्वरा में नहीं आए, ठीक है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो कभी किसी ने उनको देखा ही नहीं था, इसका मतलब ये है वो मदीना मुनव्वरा के बाहर से आए थे, लेकिन बाहर से आए, और उस जमाने में तो आज की तरह से कोई लग्जरी गाड़ी में तो नहीं कोई आता था कि वो बिल्कुल ही अच्छे साफ सुथरे कपड़े में हो, ठीक है। तो वो इस सूरत में आए और फिर आकर के उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करने शुरू कर दिए, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जवाब दिए, ये भी नहीं पूछा कि भाई आप कौन हैं, आप क्यों मुझसे सवाल कर रहे हैं, जरा अपना तारुफ तो करवाएं, कुछ नहीं पूछा, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने शुरू कर दिए, ठीक है, इस्लाम ये है, फिर फरमाया मल ईमान, ईमान क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जवाब दिया, फिर फरमाया मल एहसान, एहसान क्या है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया कि क्या था वो हदीस के अंतअबुदल्लाहु कअन्नका तराक कअन्नका तराहु, कि तू अल्लाह ताला की इबादत करे गोया कि तू उसको देख रहा है, फइल्लम तकुन तराहु फइन्नका यराक, और बेशक अगर तू उसको नहीं देख रहा है तो वो तो तुझे देख ही रहा है, इस एहसास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करना, ये एहसान फरमाया कि ये एहसान होता है, ठीक है। तो एहसान बेसिकली इस्लाम का वो दर्जा है कि इंसान को ऐसा अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक पैदा हो जाए कि वो अल्लाह ताला की हर वक्त अपने आप को ना नजरों में रखे, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं हर वक्त, और कभी भी कोई ऐसा लम्हा उसकी जिंदगी में ना आए कि जब वो अल्लाह ताला से गाफिल हो, हत्ता कि इतना भी हो सकता है कि ना सिर्फ ये कि अल्लाह उसको देख रहे हैं, बल्कि इस दर्जे तक भी इंसान पहुंच सकता है कि एज इफ वो अल्लाह ताला को देख रहा है, ठीक है। तो ये मोहब्बत के इंतहा दर्जे वाली कैफियत होती है कि गोया कि बंदा अल्लाह ताला को मुस्तकिल देख रहा है, मुशाहिदा कर रहा है अल्लाह ताला का, तो ये एहसान की तारीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो सुलूक भी हो गया और एहसान का लफ्ज भी डिस्कस हो गया। बाकी आप क्या पूछ रहे हैं कि एहसान नमाज ऐसे पढ़ना जैसे अल्लाह आपको, जी, तो वही हदीस जुब्राइल के अंदर जो अल्फाज थे तो अरबी अल्फाज आपके सामने भी पढ़े थे, ठीक है। तो सुलूक और एहसान दोनों जो है, जो अल्फाज है ना, ये इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये एक पेयर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, सुलूक और एहसान, कभी इसको कहा जाता है तसव्वुफ और सुलूक, ठीक है, कभी इसको जो है वो तज़किया नफ्स की मेहनत कहा जाता है, कभी इसको तस्फिया कल्ब की मेहनत कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये सब जो है, ये वर्ड्स जो है इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मकसद इनका यही होता है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, ठीक है। तो इसकी जो मेहनत होती है ना, इसको जो है वो तसव्वुफ सुलूक या सुलूक और एहसान या तज़किया नफ्स या तस्फिया नफ्स के अलकाब से याद किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, इखलाक जमीमा और उनका इलाज, ठीक है। तो जमीमा मतलब जो कि मजमूमा होते हैं, ठीक है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना मजमूम बात करी इसने, ठीक है, तो मजमूम का मतलब जो चीज ब्लेम वर्दी होती है, ठीक है। तो ऐसे इखलाक यानी ऐसे मैनर्स जो कि ब्लेम वर्दी होते हैं, जिनके ऊपर के मजम्मत की जाती है जिनकी, ठीक है, और उनका इलाज क्या करें, कैसे करें आप, ठीक है। तो ये इस टॉपिक में ये बताते हैं हजरत एहसन, एहसान ये भी होता है क्या, अगर किसी साहिब से आपको तकलीफ पहुंची हो और आपने उनको माफ कर दिया और अच्छा सलूक किया तकलीफ के रिवॉर्ड में, उसको भी एहसान कहते हैं क्या। हाँ, उसको भी एहसान कहते हैं। एहसान का लफ्ज जो है वो नेकी के मानों में भी आता है, प्योरली नेकी के मानों में, ठीक है। तो नेकी जो है वो जो जैसे मोहसिनीन, इन अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, ठीक है। तो वहां पर तर्जुमा कैसे किया जाता है कि बेशक अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ है, ठीक है, यानी जो कसरत से नेकियां करते हैं अल्लाह ताला उनके साथ होता है, उनकी अल्लाह ताला की मदद उनके साथ होती है। तो मोहसिन कहते हैं एहसान करने वाले को। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एहसान का मतलब जो है ना वो प्योरली नेकी के माने में लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दीन के शोबों की बात हो या दीन के लेवल्स की बात की जाए, ठीक है, लेवल्स दीन के, दरजात दीन के, तो हदीस जिब्राइल की जो तारीफ है वो सबसे ज्यादा सूट करती है दरजात के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है। तो फिर उसमें प्योर नेकी करने वाली बात नहीं आएगी, बल्कि उसमें जो है ना वो ये वाली कैफियत आएगी, ठीक है। क्योंकि अल इस्लाम, उसमें भी आप नेकियां ही कर रहे होते हैं ना, नमाज पढ़ रहे हैं जी, आप रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, तो ये भी तो नेकियों के काम है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एहसान नहीं फरमाया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो इस्लाम है, ठीक है। फिर उसके बाद ईमान का दर्जा आया, फिर उसके बाद एहसान का दर्जा आया। तो दर्जात के लेवल्स में ना, दर्जात के कॉन्टेक्स्ट में फिर एहसान का अलग मतलब होगा। तो शुरू इसमें सही मुस्लिम की एक रिवायत से किया कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम, कि बेशक अल्लाह ताला नहीं देखता तुम्हारे जिस्मों के की तरफ ना, और ना तुम्हारी सूरतों की तरफ, ठीक है, यानी फिजिकल बॉडी की तरफ तो अल्लाह ताला को इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, इतना जो है अल्लाह ताला नहीं देखता तुम्हारी, और ना तुम्हारे चेहरों को देखता है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि अल्लाह ताला देखता है तुम्हारे कुलूब की तरफ और तुम्हारे आमाल की तरफ, ठीक है, दिलों की तरफ और तुम्हारे आमाल, उसकी तफसील आगे आती है इंशाल्लाह। तो ये जो है बेसिकली इस डिस्कशन का मकसद है कि हम अपने कुलूब और अपने आमाल को संवारें, इतना खूबसूरत बनाएं कि वो अल्लाह ताला के सामने प्रेजेंटेबल बन सकें, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला हमारे कुलूब और आमाल को देखते ही हैं, लेकिन आखिरत के अंदर तो अल्लाह ताला हमारे इन चीज़ों को जज करेंगे और कुलूब की सेहत को देखेंगे, ठीक है। अल्यौम ला यंजुरु मालू वला बनून, अल्यौम ला यनफ़ु मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, ठीक है। तो जो कल्बे सलीम लेकर के आएगा ना, उसको फिर उसके माल और औलादें काम आएंगी कयामत के दिन, और जो कल्बे सलीम लेकर के नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ दुनिया से माल कमा करके आ गया होगा और अपनी औलादें जो है वो जन करके आ गया होगा, तो फिर उसको फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कुलूब के ऊपर मेहनत करना, मतलब यह है कि अल्लाह ताला ऐसे अमाल को कबूल नहीं फरमाते जो बज़ाहिर अच्छे मालूम हों मगर हकीकत में इखलास और तवज्जह तवज्जह कल्ब से खाली हों। मसलन कोई शख्स बज़ाहिर इबादत में मशगूल है मगर उसके दिल में गफलत छाई हुई है और इस बात की तरफ तवज्जो नहीं है कि वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा है या कोई और काम कर रहा है, तो इबादत मकबूल नहीं होगी, ठीक है, मकबूल नहीं होगी। क्या मतलब? फरमाया कि अगरचे इस सूरत में भी फर्ज तो जिम्मे से साकित हो जाएगा, यानी उसको ये इबादत लौटानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने जाहिरी तौर पर जो इबादत के अमाल करने होते हैं ना वो तो उसने कर लिए है ना, तो इस वजह से आपके जिम्मे से साकित हो जाएगा वो जो फर्ज है, ठीक है, यानी गिर जाएगा, साकित हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल सवाब से महरूम रहेगा, ठीक है। मुकम्मल सवाब का क्या मतलब? कि उस इबादत के काम से जो आपको एक तो एक होती है इबादत की सवाब वैल्यू होती है, ठीक है, हाउ मच सवाब, ठीक है, तो उससे महरूम रहेगा, ठीक है। और दूसरी एक ये भी चीज होती है कि उस इबादत की वजह से हर काम का ना एक इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी एक तो सवाब होता है जो कि आपके नामा अमाल के अंदर लिख लिया जाता है, राइट, पॉजिटिव चीजों का, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव चीजों के साथ भी होता है कि गुनाह नामा अमाल में लिख लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक यानी उसका सवाब हो गया या उसका गुनाह हो गया, बुरे काम का गुना, नेक काम का सवाब, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और भी चीज होती है, वो चीज क्या होती है? असर, ठीक है, असर, इफेक्ट इंग्लिश में उसको कहेंगे, ठीक है, ये इफेक्ट जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपके नामे अमाल में लिखा जा रहा हो, ठीक है, या ये कि ये भी कह सकते हैं कि ये नामे अमाल में लिखी हुई जाने वाली चीज नहीं होती है, ठीक है, बल्कि ये इफेक्ट जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर वो अमल क्रिएट करता है, ठीक है, चाहे अच्छा अमल हो चाहे बुरा अमल हो, अच्छा अमल अच्छा इफेक्ट क्रिएट करेगा और बुरा अमल बुरा इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। ये इफेक्ट जो होता है ना, ये फिर आपको आगे तक लेकर के चलता है, ठीक है, आगे तक काम आता है या आगे तक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसी जो नमाज होती है जो कि गफलत की नमाज हो, तो इसका ना तो सवाब पूरा मिलता है जितना मिलना चाहिए था, और ना इसका इफेक्ट इंसान को मिलता है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि दिल जिस्म का बादशाह है, जब तक उसकी इस्लाह नहीं होगी उस वक्त तक दूसरे आमाल दुरुस्त नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात हम किसी हदीस के तहत गालबन तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि दिल के अंदर जो चीजें होती हैं, तो वो अगर आप एक पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात करें, किसी मुल्क की फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मुल्क के अंदर फिर जो मुख्तलिफ एंटिटीज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरीज के लोग होते हैं, तो उनकी क्या वन टू वन रिलेशनशिप बनती है हमारे वजूद के अंदर जो आजाम अल्लाह ताला ने बनाए हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप बनती है, ठीक है। तो मुल्क का एक बादशाह होता है, तो बादशाह जो है वो हमारे बदन के अंदर क्या चीज बादशाह की जैसी होती है, वो हमारा कल्ब होता है, ठीक है। अच्छा, लोग आजकल इसमें बहुत बड़ी कोताही करते हैं, जाहिरी अमाल तो थोड़े बहुत करते हैं और उनका इल्म भी किसी हद तक हासिल करते हैं, मगर बातनी इसलाह और कल्ब की दुरुस्तगी की कुछ भी फिक्र नहीं करते, ठीक है। ये समझते हैं कि अमराज़े बातिनिया, रिया, कीना, हसद वगैरह का इलाज कोई जरूरी नहीं, फकत जाहिरी अमाल ही निजात के लिए काफी हैं, हालांकि असल मकसूद तो इस्लाह कल्ब है, जैसा कि मذکورہ हदीस से साफ मालूम होता है, ठीक है, जैसे ऊपर जो हदीस लिखी है उसे साफ मालूम होता है, और अमाल जाहिरी जरिया हैं कल्ब के दुरुस्त होने का, और जाहिर और बातिन में कुछ ऐसा कुदरती ताल्लुक है कि बगैर जाहिरी हालत दुरुस्त किए बातिनी हालत दुरुस्त नहीं होती, और जब तक जाहिरी अमाल पर दवाम हमेशगी और पाबंदी ना हो, इस्लाह बातिन दाइम नहीं रहती, लास्टिंग नहीं रहती, और जब बातिनी हालत दुरुस्त हो जाती है तो जाहिरी अमाल खूब अच्छी तरह अदा होते हैं, ठीक है। यानी क्या मतलब कि एक होते हैं इंसान की के जाहिरी आमाल, ठीक है, जो आप हाथ पैर से करते हैं और जुबान से करते हैं या ठीक है जिस्म के अज़ा से करते हैं, ठीक है, और एक होती है आपकी बातनी हालत, यानी आपकी जो रूह है उस रूह की क्या कैफियत है, आपका जो नफ्स है उस नफ्स की क्या कैफियत है, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये बजाहिर तो बड़ी डिफरेंट है, एक का ताल्लुक रूहानियत के साथ है, ठीक है, यानी नॉन फिजिकल चीज है वो बिल्कुल, ठीक है, नॉन मटेरियल चीज है, आप उसको फिजिकली परसीव नहीं कर सकते, आप उसको कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते अपने फिजिकली, यानी जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ना आप उसको कैमरे की आंख से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना आप उसको जो है वो किसी ऑडियो रिकॉर्डर के अंदर उसको उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है, इट्स ऑल स्पिरिचुअल, ठीक है, सब कुछ रूहानियत है। लेकिन दूसरी चीज क्या है जो कि बिल्कुल फिजिकल है, ठीक है, वो आप जो है वो ऐसे करते हैं कि एक इंसान को नजर आता है, कैमरे की आंख से आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वीडियो बना सकते हैं, उसकी पिक्चर खींच सकते हैं, और आप जो है वो उसको अगर उसमें कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे आप तिलावत कर रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउंड को आप बाकायदा एक ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये इतनी ज्यादा फिजिकली परसीवेबल चीज है, ठीक है। तो बजाहिर दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने एक रिलेशनशिप रखा है, और ये रिलेशनशिप जो है ना, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अंदर वाला बाहर की तरफ इफेक्ट कर रहा हो, या सिर्फ रूह जो है वो जाहिर पे इफेक्ट कर रही हो और जाहिर रूह पे इफेक्ट ना कर रहा हो, ठीक है, नहीं, बल्कि दोनों तरफ से इफेक्ट होता है, ठीक है। अलबत्ता किसी का इफेक्ट ज्यादा होता है, किसी का इफेक्ट उसके मुकाबले में कम होता है, लेकिन इफेक्ट होता है दोनों साइड से, ठीक है, यानी टू वे ट्रैफिक है ये, बेसिकली टू वे इफेक्ट है। किसी को फरमा रहे हैं कि किस तरह ये इफेक्ट होता है कि जी जो अमाले जाहिर होते हैं तो वो कल्ब के दुरुस्त होने का भी सबब बनते हैं, और जाहिर और बातिन में कुछ ऐसा ताल्लुक है। हाँ, क्या कि बगैर जाहिरी हालत दुरुस्त किए बातनी हालत दुरुस्त नहीं होती, और जब तक जाहिरी अमाल पर दवाम ना हो तो इसलाह बातिन दायम नहीं रहती। ठीक है, तो यानी बाहर से भी अंदर इफेक्ट आप ना इंड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, इंड्यूस कहते हैं ना कि जी आप, वैसे तो जब ये औरतें जाती हैं ना लेबर में, तो वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं उसको, कि आर्टिफिशियली जो है वो पेन इंड्यूस करते हैं, आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जिस मेडिसिन जो है ना आपको, औरत को पेन नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके कहते हैं जी इंडक्शन। ठीक है, तो उसी तरीके से ना जी, तो इसी तरीके से आप जो जाहिरी अमाल करते हैं ना, तो अगरचे के अंदर आप ठंडे पड़े हुए हैं बिल्कुल, कोई रूह के अंदर कुछ कैफियत नहीं है, दिल के अंदर कोई मोहब्बत नहीं है, और यानी यू आर बेसिकली लाइक एज इफ यू आर डेड फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, लेकिन जब आप बाहर से अमाल करते हैं ना, तो इससे आपकी रूह के अंदर गोया के एक जंप स्टार्ट भी होता है। ठीक है, एक एक इफेक्ट क्रिएट होता है, तो इवन मुर्दा रूह भी जो होती है ना उसमें थोड़ी थोड़ी जान पैदा हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से जब आपके अंदर मामला यानी जब इंजन स्टार्ट हो जाए, और फिर वो ऐसा स्टार्ट हो कि फिर माशाल्लाह बंद ही नहीं होता, तो फिर उस वाले इंजन के साथ आपके जो जाहिरी अमाल होते हैं तो उनकी तो बात ही कुछ और हो जाती है। आगे फरमाते हैं कि खूब खूब समझ लेना चाहिए कि जिस तरह आमाल जाहिर व सौम व सलात वगैरह का अदा करना और उनके अदा करने का तरीका जानना वाजिब है, इसी तरह, ठीक है, अब ये जो इसी तरह है ना, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी निगाहों से ओझल हो गया है इस दौर के अंदर खुसूसन, तो इसी तरह कल्ब को बातनी अमराज रिया नमूद, ठीक है, रिया यानी किसी अल्लाह के अलावा किसी और की वजह से नेकी का काम करना, इसको रिया कहते हैं, और नमूद व नुमाइश भी वही मामला आता है कि जी आप दिखाने की खातिर जो है वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कीना, ठीक है, गुस्सा ऐसा जो कि दिल के अंदर बस रच बस जाए, ठीक है, एक लास्टिंग गुस्सा जो कि अंदर ही अंदर आपको यानी बिजी रखे, उसको कीना कहते हैं, हसद और बुग़्ज वगैरह से साफ रखना और इन मोहलिक अमराज से कल्ब की सफाई का तरीका जानना भी जरूरी है। ठीक है, बल्कि जरूरी का लफ्ज तो फिर हम बहुत सारी चीजों को जरूरी समझते हैं, लेकिन लफ्ज फर्ज जो है वो थोड़ा सा हमें ज्यादा परेशान करता है कि अच्छा ये तो फर्ज था, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो भाई जरूरी के बजाय अगर हम यहाँ पे लफ्ज फर्ज भी लिखें ना, तो वो भी 100% दुरुस्त होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, बल्कि गुनाहों को छोड़ना भी फर्ज है। ठीक है, तो ये जो चीजें दिल के अंदर रहती हैं, तो इनको एक तो ये कि अगर इनको एड्रेस नहीं करेंगे, इनका इलाज नहीं करेंगे, तो ये जो है ना गुनाहों का, जाहिरी गुनाहों का बायस बनेंगी। ठीक है, दिन में कीना होगा तो किसी ना किसी दिन जो है वो उस कीने का इजहार जुबान पर भी होगा, और जुबान पर जब इजहार हो जाता है तो फिर वो गीबत बन जाती है, फिर वो किसी का दिल तोड़ना वाला वाले अल्फाज निकल आते हैं जुबान से। ठीक है, या ये कि जुल्म के अल्फाज निकल आते हैं, आपने उसके खिलाफ कोई, जब आपके पास अथॉरिटी आई, पावर आई, तो जिसके खिलाफ आपके दिल में कीना था, आपने उसके कत्ल का हुक्म जारी फरमा दिया। ठीक है, तो अब ये कत्ल का जो गुना आपने यानी जिसका ऑर्डर दिया है, तो ये किस वजह से हुआ, आपके दिल के कीने की वजह से हुआ, तो कीने का इलाज नहीं करेंगे तो कल को किसी ना किसी जाहिरी गुना में मुब्तला होंगे, एक तो ये रीजन है, और दूसरा क्या रीजन है कि सराहतन कुरान के अंदर अल्लाह ताला हुक्म भी फरमाते हैं, वज़रु ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, कि तुम छोड़ दो वो गुनाह जो तुम जाहिर में करते हो और जो तुम बातिन में करते हो, यानी बातिन में क्या चीज होती है जो कि जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रही होती, लेकिन दिली दिल के अंदर आप हसद में मुब्तला हैं, और तो हसद तो गुनाह है ना, ये तो ऐसा नहीं है कि जी जब तक जाहिर ना हो उस वक्त तक कोई मसला नहीं होता, तो हसद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये नेकियों को खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। ठीक है, तो ये सब बातिनी गुनाह है, तो इनसे छोड़ने का कुरान के अंदर सराहतन हुक्म है, और कुरान में अगर हुक्म आ जाए वजूब के दर्जे में, वजूब के दर्जे का जो हुक्म होता है, तो उससे तो फर्जियत साबित हो जाती है ना उस चीज की। हदीस में है अन नुमान इबन बशीरन रज़ियल्लाहु तआला अन मरफूअन फी हदीसी तवीलन। ठीक है, यानी मरफू का मतलब क्या कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली ये अल्फाज सुने थे, और एक हदीस तवील की ये एक सबसेट है, ये जो अल्फाज हैं कि अला व इन्ना फिल जसद मुगतन, सुनो सुन लो कान खोल कर कि जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है। इजा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, कि जब वो दुरुस्त हो जाता है तो तमाम बदन दुरुस्त होता है। वह इजा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल कल्ब, ठीक है, कि जब वो अच्छा हो जाता है तो फिर पूरे बदन दुरुस्त हो जाता है, और जब वो फासिद हो जाता है तो तमाम बदन फासिद और खराब हो जाता है। और अला कि सुन लो के वही कल्ब, कि ये कल्ब होता है, ठीक है। अब इस हदीस का मतलब ये है कि आज़ा की दुरुस्ती और अताअत खुदावंदी बजा लाना दिल के दुरुस्त होने पर मौकूफ है, क्योंकि दिल जिस्म का बादशाह है और रईयत की इस्लाह मौकूफ होती है बादशाह के नेक होने पर। बस आज़ा नेक काम उस वक्त ही करेंगे जब दिल नेक होगा, लिहाजा दिल की इस्लाह की कोशिश करना वाजिब है, ठीक है। तो अब ये एक ऐसी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है कि जिसके ऊपर हम यानी घंटों तो क्या हफ्तों भी बात करते रहें तो बात मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी ताल्लुक है इसका हमारे हमारी इस्लाह के साथ, ठीक है। अलबत्ता इसके अंदर जाहिरी तौर पर जो कंफ्यूजिंग थोड़े से फैक्टर्स हमारे लिए हो सकते हैं तो वो हम कम्प्लीटली तो एड्रेस ये अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक पॉइंटर दे दें कि इसमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गोश्त के टुकड़े की बात करी है, ठीक है। तो ये गोश्त का टुकड़ा जो है तो इसके अंदर फिर आपको तफसील करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जिस्मानी इस्लाह की बात हो रही है, यहाँ पर रूहानी इस्लाह की बात हो रही है, ठीक है, या यहाँ पर जो है वो इन दोनों के किसी मिक्सचर की बात हो रही है, किसी कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए कि जिस्मानी टुकड़ा जो कल्ब होता है वो हमारे डॉक्टर अज़ा जानते हैं कि उसका क्या मामला होता है, ठीक है, उसका जो है वो जिस्म के अज़ा के सेहत के अंदर कितना रोल होता है, ठीक है। तो हार्ट डिजीजेज और यानी जो फिजिकल हार्ट की डिजीजेज होती हैं या फिजिकल हार्ट के फंक्शंस होते हैं तो आज के दौर में पता है कि जी उसका कितना इफेक्ट होता है, कितना असर होता है जिस्म के ऊपर, ठीक है। तो हार्ट अटैक और ये सारी चीजें, ठीक है, वो तो आप लोग ही ज्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो उसका ताल्लुक इंसान के जिस्म के साथ होता है, लेकिन जो जिस्म के की बीमारियां होती हैं जैसे भी हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई या आपके सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से आप गुनाह तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन के कोई किसी को प्रॉब्लम हो गई या वो कोई नेक बंदा था तो भाई उसके नामे अमाल में गुनाह तो नहीं लिखे जा रहे होते कि आपके जो है वो जी हार्ट की पंपिंग अच्छी नहीं हो रही, आपका यानी पानी जो है वो क्या जब हार्ट की पंपिंग जो है इफेक्ट होती है तो आपके होता है ना पैर में पानी जमा हो जाता है, ठीक है। तो इसका ताल्लुक आपके गुनाहों से तो नहीं होता ना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल काम था जिस मकसद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे दुनिया के अंदर रूहानी इस्लाह के लिए, राइट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी इस्लाह की बात कर रहे हैं तो रूहानी कल्ब की बात कर रहे हैं। तो अगर रूहानी कल्ब की बात कर रहे हैं तो फिर मुदगा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मुदगा जो है ये तो एक जिस्मानी चीज होती है, ठीक है, जैसे कि माँ के पेट के अंदर मुदगा होता है जिस मुदगा के अंदर फिर रूह फूंकी जाती है तो फिर वो एक जिंदा बच्चा बन जाता है, ठीक है। या ये कि इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है, एक कॉम्बिनेशन है, या एक एक दूसरे के साथ ये चिपके हुए होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं। तो ये सारी तफसीलात हैं इसके अंदर जो कि किसी ना किसी दर्जे में मशायख ने एड्रेस करी भी हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम आगे चलेंगे कि देखें देखिए शरीयत ने ऐसी हालत में जबकि इंसान को खाने की शदीद ख्वाहिश हो और इस हालत में नमाज पढ़ने से तबीयत परेशान हो तो ये हुक्म दिया है कि ऐसी हालत में नमाज पढ़ना मकरूह है, ठीक है। देखें शरीयत के अंदर ना फिजिकल हालत को भी कंसिडर किया गया है, ऐसा नहीं है कि जी फिजिकली तुम जिस भी हालत में हो तुमने तो जी नमाज पढ़नी है, ठीक है, बल्कि मकरूह करार दिया कि इस फिजिकल कैफियत में ना तुम नमाज ना पढ़ो बल्कि पहले खाना खा लो फिर नमाज पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो पेट के अंदर जो भी क्रैम्प्स हो रहे हैं या दर्द हो रहा है तो इसका जो है ना वो आपकी स्पिरिचुअल हालत के ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो तुम इस हालत में इस हालत से पहले निकलने की फिक्र करो, खाना खा लो पहले, ठीक है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ो, बशर्ते कि नमाज का वक्त खत्म ना हो रहा, ठीक है, यानी एज लॉन्ग एज यू आर स्टिल विद इन द टाइम ऑफ दैट प्रेयर, ठीक है। तो वो कजा करने का की इजाजत नहीं है कि जी भूख लग रही थी तो मैंने नमाज कजा कर दी, ठीक है, ये तो नहीं कह रहे। तो इसमें हिकमत यह है कि इबादत से मकसूद अल्लाह ताला के सामने हाजिरी और बंदगी का इजहार है, इस तरह के जाहिर और बातिन इसकी इबादत में मशगूल हो اور غیر اللہ کی طرف حتی الامکان توجہ نہ رہے، اور جب بھوک لگی ہوگی تو اگرچہ ظاہر بدن نماز میں مشغول ہوگا لیکن دل پریشان ہوگا اور چاہے گا کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائیں تاکہ جلدی سے کھانا مل جائے۔ پس اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح حاضری چاہیے تھی اس میں بہت بڑا خلل واقع ہوگا، لہذا ایسی حالت میں نماز کو مکروہ کہا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ نظر خداوندی کا محل قلب ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے قلوب کی طرف دیکھتے ہیں، تو قلب کو جو ہے وہ یعنی ایسی حالت میں رکھنا یہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹیبلس بنا سکیں۔ جیسے شروع میں بات کی گئی تھی کہ قلب کو جو ہے وہ صرف آخرت کے لیے پریزنٹیبل نہیں بنانا، بلکہ اس دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے پریزنٹیبل بنانا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت میں ہمارے قلب کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمارے قلب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شریعت مقدسہ نے اس کی اصلاح کا بہت بڑا انتظام کیا ہے، بزرگان دین نے اصلاح قلب کے لیے برسوں مجاہدے اور ریاضتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا قال رکعتان مقصدتان خیر من قیام لیلۃ والقلب سا قلب ساہن، یعنی میانہ روی کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے رات بھر ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے کہ دل غافل ہو۔ ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ ہمارے دین کے اندر کوانٹیٹی ڈیزائریبل نہیں ہے بلکہ کوالٹی ڈیزائریبل ہے، تو دو رکعت کوالٹی والی آپ نماز پڑھ لیں، اس سے بہتر ہے، یعنی یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ساری نماز ساری رات جو ہے وہ ایک مارے باندھے کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ مشغول رہیں لیکن آپ کا دل غافل ہے اس میں آپ، تو یہ کثرت ہمارے یہاں مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بظاہر تو بڑا آسان سا کانسیپٹ ہے لیکن آج کے دور میں خاص طور پر ہم نے اس کو بالکل ہی ریورس کر دیا ہے، اور ہم صرف کثرت کے پیچھے، جو دیندار ہوتے ہیں وہ صرف کثرت کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، اور اس کی جو حسن ہوتا ہے اور کوالٹی ہوتی ہے اس کی طرف سے ہم یعنی ہماری توجہ ہٹ چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اس کے فرائض واجبات اور سنن کو حضور قلب کے ساتھ ادا کرے، اگرچہ قیام و قراءت وغیرہ طویل نہ ہو، ایسی دو رکعتیں رات بھر غفلت قلب کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر اور مقبول ہیں۔ اس حدیث سے اہتمام قلب کی کس قدر تاکید معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ فی الحقیقت فعل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ کیسا کام کیا، اور مقدار مطلوب نہیں ہے کہ کتنا کام کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے دین کی حقیقت یہ ہے کہ مقدار مطلوب نہیں بلکہ کیفیت مطلوب ہے۔ کام باقاعدہ اور عمدہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور مقبول ہے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، اور اگر بہت زیادہ کام ہو لیکن بے قاعدہ اور بے ضابطہ اور غفلت سے ہو تو وہ ناپسند، یعنی ناپسند ہے، ناپسندیدہ ہے یار۔ ٹھیک ہے، اچھا تو تھیوری تو ہم نے پڑھ لی، صحیح ہے، اب اس کے پریکٹیکل کی طرف بھی ذرا آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پریکٹیکل اس کا اس کے اندر ایک اینگل ہے، ایک اس کا ایک زاویہ ہے اس کے اندر، جو کہ اس تھیوری کے اندر کورڈ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ بھی ہے، یعنی ایک زاویہ اس کے اندر یہ بھی ہے اس کو دیکھنے کا، کہ جب ہم یہ تھیوری پڑھ لیتے ہیں نا، تو اس تھیوری سے ہمیں یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی کوالٹی ڈیزائرڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا ایک اور بھی تو کانسیکوینس نکلتا ہے، وہ کیا کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی، اس کو سن کر کے جب ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہمارا ذہن ایک دوسری طرف بھی تو جا سکتا ہے، فرائض پہ فوکس، کنسسٹنسی، نہیں، یعنی ایک نیگیٹو ایسپیکٹ جو ہے نا اس کا، وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. ظاہری اعمال پورے نہ کرنا, جی بالکل عمل نہیں کرنا, ٹھیک ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس لیے کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے تو عمل میں کوالٹی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, ہمارا تو ہر عمل ہی جو ہے وہ بے کوالٹی ہے, صحیح ہے. تو پھر یہ جو انہوں نے لکھا ہے ساری باتیں بالکل سچ لکھی ہیں, 100% حق لکھی ہیں, لیکن اس کے اوپر پھر ہمارے ذہن میں یہ بات بھی تو آ سکتی ہے نا, ٹھیک ہے, کہ بھائی ہماری تو کوئی چیز ہی کوالٹی والی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہ کرو, ٹھیک ہے, سنت کو ترک کر دو, اعمال کو ترک کر دو, ٹھیک ہے, بیکاز کوالٹی وی جسٹ کین ناٹ پروڈیوس کوالٹی, ٹھیک ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور گناہوں کے خیال آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تصویریں جو کہ ہم نے نماز کے باہر دیکھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو ویب سائٹس ہم نے براؤز کی ہوتی ہیں یا جو ہم نے اپنے موبائل فون کے اوپر تماشے دیکھے ہوتے ہیں, تو ہم تو ہر نماز کے اندر وہ تماشے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, تو پھر نماز نہ پڑھو, ٹھیک ہے, کیونکہ کوالٹی مقصود ہے, کوانٹیٹی تو مقصود نہیں ہے. تو پھر چلو بھائی, چلو بہت ہی کوئی دیندار ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ فرض پڑھ لے گا, لیکن فرض کے بعد تو وہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا نا, کچھ بھی نہیں کرے گا نا, اس لیے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی فاسد ہے, بے کوالٹی کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ خیال آتا کیوں ہے, ٹھیک ہے, یہ خیال جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے, کوئی جی یہ شیطان لاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان کی ایگزسٹنس جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ رہتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ تو موجود ہے نا, تو وہ نا پھر اس طریقے سے ہمیں بہکاتا ہے, اس کا ایک کام ہی ہے, اس کی جاب ڈسکرپشن, اس کا رول یہ ہے, زندگی کا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس طریقے سے نا ہمیں اعمال سے محروم کرتا ہے, وہ ہمیں مایوس کرتا ہے کہ تم نئی کوالٹی پروڈیوس کر سکتے, ٹھیک ہے, وہ لوگ جو کہ بڑی محنتیں بھی کرتے ہیں نا, بڑے ارادے بھی کرتے ہیں کوالٹی پروڈیوس کرنے کی, وہ بھی بری طریقے سے مات کھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آج کے دور میں کہاں سے کوالٹی لے کر کے آئیں گے, ٹھیک ہے, ہر جگہ تو بد نظری ہو رہی ہوتی ہے, ہر جگہ جو ہے وہ تو بد زبانی ہو رہی ہوتی ہے, لوگوں کی پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں سننی پڑتی ہیں, ان لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بولنی پڑتی ہیں, کبھی کسی کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کے خلاف کوئی غیبت کر رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی دس از وی آر, ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں ہماری زندگی, ٹھیک ہے, تو بھائی کیا مسلح پہ کھڑے ہونے کے بعد کیا کوئی جادو ہو جائے گا کہ مسلح پہ کھڑے ہوئے اور ساری چیزیں ختم, بس جی اللہ اور میں, ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں نا جی میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے, تو مسلح پہ کھڑے ہو کے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ, کیا آپ کا اللہ کہاں چلا جاتا ہے آپ کا, اللہ, ٹھیک ہے, اللہ تو نہیں ہوتا نا پھر آپ کے دل کے اندر, پھر تو یہ سارے کے سارے تماشے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ پھر ہمیں مایوس کرتا ہے, وہ ہمیں اعمال سے پھر محروم کرتا ہے, تو یہ اس کا ایک اینگل ہے جس کو کہ ہم اگنور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, دس از اے ریالٹی, ٹھیک ہے, تو اس کو ذہن میں رکھ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی حرص اور اس کا علاج. اچھا مجھے ذرا دو منٹ کی بریک چاہیے کم اس کو آپ سے, ذرا ایک گھر کا کام ہے, تو آپ ذرا جو پڑھا ہے اس کو ایک اگر ایک نظر دیکھ لیں یا کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ لکھ لیں, جب تک میں واپس آتا ہوں انشاءاللہ. اچھا چلیں, الحمدللہ کام ہو گیا, نمٹ گیا. تو اب یہ جو اخلاق ذمیمہ میں سے پہلا والا اخلاق اور اس کا علاج, یعنی زیادہ کھانے کی حرص, تو حرص جو ہے یہ بھی روحانی بیماریوں میں سے ایک روحانی بیماری ہے, اور اس میں سے پھر یہ پہلے کھانے کی حرص اور زیادہ بولنے کی حرص ان کا تذکرہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے ایک بات ایکچولی مجھے آپ کو پہلے بتانی تھی یا مینشن کرنی تھی, آپ کو پہلے پتہ ہی ہوگی کہ یہ جو کتاب ہے اصل میں یہ لکھی ہوئی ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, ٹھیک ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب کیا تھا کہ لوگوں نے بلکہ علماء نے ان کو کس لقب سے یاد کیا, کیا ان کا ٹائٹل ہے, کوئی بتائے گا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائٹل کیا ہے, جی حکیم الامت, ٹھیک ہے, حکیم, حکیم کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر, یعنی امت کا حکیم, تو حکیم کیا ہوتا ہے, حکیم کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ ظاہر پر نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ظاہر پر تو ظاہر ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوتی ہیں, ظاہر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ
जाहिर में जो सिम्टम्स वो देखता है अगर बीमारी के, तो उन सिम्टम्स के कॉजेस के ऊपर होती है। यही तो डॉक्टर होता है, वरना तो सिम्टम्स तो हमें भी नजर आ जाते हैं, ठीक है, मेरे जैसे बंदे को भी सिम्टम्स तो नजर आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को तो फिर वो कॉजेस नजर आते हैं ना, या वो डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि जी ये क्यों है सिम्टम्स ऐसे, ठीक है। तो ये हकीम थे, तो हकीम इनको कहा क्यों गया, क्योंकि इन्होंने उम्मत के जो मसले हैं ना, जो जाहिरी तौर पर हमें नजर आते हैं कि जी खिलाफत खत्म हो गई, हुकूमत खत्म हो गई, और जो है वो काफिर जो है वो मुसल्लत हो गए, और जो उम्मत के ऊपर टूट पड़े हैं, और ये बहुत बुरा हाल है जी, ठीक है। तो भाई इसके कॉजेस क्या हैं, राइट, क्यों उम्मत की ये हालत बनी है, तो इस पर इनकी इनकी नजर थी बहुत ज्यादा। और इन्होंने इसके ऊपर फिर एक तो मेहनत बहुत करी, लोगों को इसके अंदर यानी इसके बारे में आगाही बहुत दिलाई, ठीक है, और अपने मवाइस के जरिए से भी, यानी वाज खुतबे वगैरह के जरिए से, और अपनी तहरीरों के जरिए से भी बहुत ज्यादा इस मौजू के ऊपर काम किया, ठीक है। तो इसी तहत जो है वो इन्होंने फिर इन सारी बातों के जो चीजें हैं ना, ये अगरचे कि ये खुद भी जानते हैं इस बात को और मानते हैं कि ये इलाज मुआलजा जो होता है ये एक प्रैक्टिकल काम है, ये कोई थ्योरी से नहीं हो जाता, किताब पढ़ने से इलाज नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारी आसानी की खातिर और हमारी जो है वो अवेयरनेस की खातिर इन्होंने इन चीजों को थ्योरी में भी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मेडिकल साइंस की किताबें भी तो बहरहाल होती हैं ना, राइट। किताबों से आप कोई फारिग तो बिल्कुल मेडिकल साइंस को खत्म तो नहीं कर सकते कि किताबों की कोई जरूरत नहीं है, जो बस डॉक्टरी की जरूरत है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने लिख भी दिया इन चीजों को, लेकिन इलाज जो है वो किताब पढ़ने से नहीं होता, ये हर अकलमंद इंसान जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा, ज्यादा खाने की हिर्स और उसका इलाज। फरमाते हैं कि बहुत से गुनाह पेट के ज्यादा पालने से होते हैं, इसमें कई बातों का ख्याल रखना चाहिए कि मजेदार खाने की पाबंदी ना करो। अब ये टिप्स दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हर डॉक्टर जो होता है वो अपने पेशेंट को जो है ना कुछ हेल्थ टिप्स भी देता है, तो ये हेल्थ हेल्थ टिप्स दे रहे हैं। पाबंदी ना करो, ठीक है, क्या मतलब कि बहुत रेगुलरली जो है ना वो मजेदार खानों का नहीं, कि जब बस जी मैंने तो सुबह रोजाना सुबह को ना दो पराठे ही खाने हैं, पराठा नहीं मिला ना तो मेरी सुबह नहीं हो सकती, मैं दफ्तर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने आप को पाबंद ना करो, दिन के वक्त जो है वो मैंने इस 3 सालन जो है ना वो टेबल के ऊपर होने चाहिए, ठीक है, और उसमें चावल भी होना चाहिए, उसमें रोटी भी होना चाहिए, उसके अंदर ये भी होना चाहिए, ठीक है, चटनी भी होनी चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, और सब ये पाबंदियां जो है ना, ये पाबंदियां इन्फोर्स ना करो, तुम्हारी जिंदगी तो खराब होगी ही, तुम्हारे घर वालों की भी जिंदगी खराब होगी इसकी वजह से, ठीक है। और आज के दौर में बेशुमार हमारे मुआशरे में ऐसे घर हैं कि जी बीवी जो है वो बस सुबह को उठती है और फिर जो उसकी जिंदगी किचन में गुजरती है, और किचन उसके अंदर होता है और वो किचन के अंदर होती है, ठीक है, फिर वो उसके दिल से बदवाएं निकल रही होती हैं खाली शौहर के लिए और अपनी सास के लिए, ठीक है, या ससुर के लिए, ठीक है। तो इस तरह ना करो, ठीक है, तो पाबंदी ना करो, यानी इस किस्म की डिमांड्स ना करो, ठीक है। अच्छा खाना मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है, उस बंदे का शुक्र अदा करो जिसने वो खाना तुम्हारे लिए बनाया है, ठीक है, लेकिन डिमांड ना करो कि जी मुझे अब ये खाना, मुझे वो खाना, राइट। हराम रोजी से बचो, हद से ज्यादा पेट ना भरो, बल्कि 2-4 लुकमे की भूख रख कर खाना छोड़ दो, ठीक है। तो यानी थोड़ी बहुत भूख रखकर खाना छोड़ दो, ये जो है वो हमारे यानी अकाबरीन का ये तरीका है। आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली ये करना जो है वन वे और दी अदर बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल इसी के अंदर खैर है, रूहानी और जिस्मानी दोनों दोनों चीज़ों की, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर पीछे हमने उसमें कयामत के निशानियों और हालात के तहत भी बात करी थी कि आज के दौर में ना भूखे भूख से मरने वाले वाकयात नहीं मिलते हैं, ठीक है, इल्ला ये कि किसी मुल्क के अंदर वो जो कहत होता है, जो कि बेसिकली जंगों की वजह से कहत बाकायदा इन्फोर्स किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज कहत साली जो है ना वो आज के दौर में नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, इसलिए कि आज के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई है, और प्रोडक्शन को फिर प्रिजर्वेशन उसकी इतनी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ और रेफ्रिजरेशन वाली लाइफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खाना जो है ना उसकी तादाद तो वाफिर मकदार में मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब बीमारियां किस वजह से होती हैं, बीमारियां जो है वो ओवर ईटिंग की वजह से होती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में चीजें मौजूद हैं, और दूसरी क्या कि वो जो प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव के अंदर फिर चीजें होती हैं, ट्यूमर कॉजिंग कार्सिनोजेंस और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर होते हैं,
ठीक है। तो इस दौर में जो है ना, ये खाना जो है वो दरअसल रूहानी बीमारी का सबब भी नहीं बल्कि जिस्मानी बीमारी का भी कसरत के साथ सबब बन रहा है। तो फरमाते हैं कि इसमें बहुत सारे फायदे हैं, मसलन दिल साफ रहता है जिससे अल्लाह ताला की नेमतों की कदर आती है और इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है। तो यानी दिल साफ रहता है, भाई दिल का क्या मतलब दिल साफ रहता है, आप दिल में को थोड़ी खाना ठूस रहे होते हैं कि वो खाना जाने से जो है वो दिल गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दिल साफ रहने से क्या मुराद होती है, आपसे पूछें या बता दें, चलिए अभी टॉपिक मुकम्मल कर लेते हैं। दिल साफ इस तरह से रहता है कि जिस्म और दिल, ठीक है, या जिस्म और रूह, ठीक है, ये दोनों ना अल्लाह ताला ने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनाए हैं, ठीक है। जिस्म और रूह आप कहना चाहें, या आप ये भी कह सकते हैं कि नफ्स और रूह, ठीक है। तो नफ्स, जब आप जिस्म को ज्यादा फीड कर रहे होते हैं ना, तो उसको फीड करने से ऑटोमेटिकली आपका नफ्स भी ज्यादा फीड हो रहा होता है, ठीक है। तो नफ्स जब ओवर फीड हो रहा होता है, तो चूंकि ये इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूह से, तो ऑटोमेटिकली आपकी रूह जो होती है ना वो स्टार्व हो रही होती है, ठीक है। और जब रूह को आप ओवर फीड कर रहे होते हैं, तो आपका नफ्स भी जो है वो एक एक हद तक स्टार्व हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चूंकि अल्लाह ताला ने रखा है, तो इस वजह से जब आप खाना जो है वो इस तरह कंट्रोल्ड खाएंगे ना, तो फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी रूह जो है वो सेहतमंद होगी। तो दिल साफ से मुराद यही है कि रूह आपकी सेहतमंद होगी, और जब रूह सेहतमंद होगी तो फिर आपके अंदर शुक्र वाली कैफियात पैदा होंगी, अल्लाह ताला की नेमतों की कदर वाली कैफियात पैदा होंगी और अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होगी। दिल में रिक्कत और नरमी रहती है जिससे दुआ और जिक्र में लज्जत मालूम होती है, ठीक है। दिल नरम होता है कि मुराद यही होती है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और खशियत के कैफियात पैदा होती हैं, तो उसके नतीजे में फिर एक ऐसा रिक्कत कलबी और वाला वाला मामला पैदा होता है कि दुआ और जिक्र के अंदर फिर आपको खूब लज्जत महसूस मालूम होती है। तो लज्जत जो है ना वो मकसूद नहीं है, ठीक है, कि हम लज्जतें हासिल, यानी रूह की लज्जतें हासिल करना अब उसको अपना मकसूद बना लें, बल्कि इससे इस ये लज्जत हासिल होने से सिर्फ इतना फायदा होता है कि फिर जो करने के काम होते हैं वो करने आसान हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लज्जत जो है ना फिर वो आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। तो जब लज्जत अट्रैक्ट कर रही होती है, तो फिर काम करना आसान हो जाता है, और जब कोई लज्जत नहीं होती है, तो फिर फोर्स करना पड़ता है अपने आप को दुआ करने के लिए और जिक्र करने के लिए, ठीक है। तो लज्जत मकसूद नहीं है, लेकिन लज्जत जो है वो मकसूद को हासिल करने में मददगार होती है, ठीक है। नफ्स में बड़ाई और सरकशी नहीं पैदा होती, ठीक है। अब ये जो बड़ाई सरकशी भी जो है वो यानी ओवर फीडिंग के जरिए से होती है। किसी बुजुर्ग ने एक दफा अपने मुतवस्सिरीन के दरमियान बैठ करके भूख के फजाइल बयान करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो उनके किसी शागिर्द ने पूछा कि हजरत, ये भूख भी कोई फजीलत वाली चीज है, आप क्यों उसके फजाइल बयान कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, अगर फिरौन को फाके आते हैं ना, तो वो कभी भी खुदाई का दावा ना करता, ठीक है। वो खुदाई का दावा इसलिए कर रहा था कि उसका पेट भरा हुआ था, ठीक है, उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी थी। अब उसने, जाहिर है उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज क्या होती है, खुदाई का दावा करना होता है। तो फाके के फजाइल फिर हुए ना कि नहीं हुए? अल्लाह ताला जो है वो यानी इतनी बड़ी बुराई से इंसान बच जाता है। नफ्स को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है और तकलीफ को देखकर अल्लाह का अजाब याद आता है, इस वजह से नफ्स गुनाहों से बचता है। गुनाहों की रग़बत कम होती है, क्योंकि नफ्स जब मजबूत हो जाता है यानी गालिब हो जाता है, तो नफ्स जो है चूंकि है हमारा दुश्मन, ठीक है। ये बात हम पहले डिस्कस की थी ना पिछले दिनों, कि वो गद्दार है जो कि हमारे अंदर मौजूद है, ठीक है। इंसर्जेंट्स, ये गद्दार जो होते हैं, ये दुश्मन तो ये होते हैं, लेकिन इनके पास अगर हथियार ना हो तो फिर ये कुछ कर तो नहीं सकते ना। लेकिन जब आप इनको हथियार प्रोवाइड कर देते हैं, आपसे मुराद ये कि आपका दुश्मन मुल्क बराबर वाला, ठीक है, वो आप अगर आपके मुल्क के अंदर जो गद्दार रहते हैं, ठीक है, स्पाइज रहते हैं, गद्दार रहते हैं, उनको अगर हथियार प्रोवाइड कर दे, तो फिर क्या होता है, फिर ये इंसर्जेंसी शुरू कर देते हैं, ठीक
ठीक है, कहीं धमाका कर रहे हैं, कहीं पे लोगों को मार रहे हैं, कहीं पे ऐसे ही जो है वो लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हथियार प्रोवाइड करना क्या है कि जब हम ओवर फीड करते हैं ना नफ्स को, तो गोया कि हम उसको हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हथियार प्रोवाइड करेंगे तो फिर तो वो उससे वो वही वाले काम करेगा ना, यानी बदमनी फैलाने वाले काम करेगा, तो उसको कहते हैं गुनाह, ठीक है। तो इस वजह से ना फिर वो गुनाह करना शुरू हो जाता है, और जब जाहिर है आप उसे हथियार छीन लेंगे, ठीक है, उसको अनआर्म कर देंगे, उसको कमजोर कर देंगे, तो फिर वो गुनाह उसे खुद ब खुद जो है वो करे कर ही नहीं सकता वो गुनाह, ठीक है। तो गुनाह की रगबत कम हो जाती है, से ये मुराद है। ये महावरतन बोल रहे हैं गुनाह की रगबत कम हो जाती है, ठीक है, वरना हकीकत में जो दुश्मन होता है ना उसमें दुश्मनी की रगबत कम नहीं हो जाती है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसके पास हथियार नहीं होते हैं, इस वजह से वो दुश्मनी के आमाल नहीं कर पाता है, ठीक है। तबीयत हल्की रहती है, बोझल नहीं होती, ओवर ईटिंग की वजह से तबीयत में एक बोझ आ जाता है, जब चला नहीं जा रहा है और कुछ करा नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, डॉक्टर ज्यादा मौजूद है, कि जब हम खाते हैं तो फिर हमारे जो स्टमक के अंदर जब फूड जाते हैं ना, तो स्टमक को उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो वो ब्लड जो होता है ना जिस्म के दूसरे हिस्सों से ना उस तरफ अट्रैक्ट होता है, ये हमने सुना है, मैंने कोई पढ़ा वड़ा नहीं है ये, लेकिन हजरत माशाल्लाह उनकी स्टडी ज्यादा होती है इन टॉपिक्स के ऊपर, तो वो अपने बयान में इस तरह की बातें बताते रहते हैं, ठीक है। तो फिर वो जो जो ब्लड आता है आपके स्टमक में, तो वो फिर दूसरी जगहों से कम हो जाता है, और स्पेशली ब्रेन की तरफ से, ठीक है। तो इस वजह से दिमाग सोना शुरू कर देता है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या तरीका बताया अल्लाह के हुक्म से, कि जब तुम खाना खाए करो ना, तो उसके बाद तुम कोशिश ना करो काम करने की, बल्कि थोड़ी देर कैलूला कर लो। जब कैलूला कर लोगे ना, तो वो पीरियड जो है वो तुम्हारे इस आराम में भी तुम्हें फायदा हो जाएगा, फिजिकली भी तुम जो है वो बेहतर हो जाओगे, और वो जो ऐसा टाइम है जिसके अंदर तुम वैसे ही कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो तुम खामखा अपने आप को फोर्स करने की गलती से भी बच जाओगे। तो तबीयत हल्की रहती है, नींद कम आती है, तहज्जुद और दूसरी इबादतों में सुस्ती नहीं रहती, भूखों और आजिजों पर रहम आता है, बल्कि हर एक के साथ रहम दिली पैदा होती है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ज्यादा खाने की हिर्स और उसका इलाज वाली बात हो गई, ठीक है। चलें अगला टॉपिक जो है वो अगली क्लास में पढ़ते हैं, अगर कोई सवाल या कमेंट वगैरह आपके पास हो तो अभी पूछ लें। हमारे मशायख जो नफ्स का मुजाहिदा या नफ्स के तस्किये के तहत जो मुजाहिदात बताते हैं, मुजाहिदात मीनिंग एफर्ट्स, ठीक है, यानी एक्सरसाइजेज या मुजाहिदात नफ्स को काबू करने के, तो उनमें सबसे पहला जो है वो कम खाना, ठीक है, वो ही होता है, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, और लोगों के साथ कम मिलना जुलना, ठीक है। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना, ना खाना पूरा ख़त्म कर देना है वरना तो मर जाएंगे, ना बोलना पूरा ख़त्म कर देना है वरना फिर बीवी छोड़ के चली जाएगी, राइट, या दफ्तर से फिर लोग निकाल देंगे। तो कम बोलना, बिल्कुल बोलना ख़त्म नहीं कर देना, और कम सोना, अगर बिल्कुल ही सोना ख़त्म कर देंगे तो भाई फिर होगा क्या, दीवाने हो जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से लोगों के साथ इख्तलात जो होता है ना हमारा, बहुत ज़्यादा पार्टी टाइम जो हम स्पेंड करना चाहते हैं तो उसमें कमी कर देना, तो ये सब जो है वो मुजाहिदात होते हैं, तो इनको जब करेंगे तो फिर नफ्स कमज़ोर होता है और इसके ज़रिए से फिर इंसान की इस्लाह होती है। इन बातों को आम किया क्यों नहीं क्या जाता, कैसे आम करें भाई, आप बताएं ना जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बातें तो नहीं है, कोई सीक्रेट्स, कोई असरार और रमूस तो नहीं है, ये तो बड़ी, अब ये आम क्यों नहीं किया जाता वाला सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका सवाल आपका ये होना चाहिए कि लोगों को ये बातें पता क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरह से अगर पूछें तो फिर इसका जवाब यही होगा कि भाई लोग पता करना नहीं चाहते ना, तो इस वजह से अब आप उनको पकड़ पकड़ करके, होता है ना कि भैया कोई खाना नहीं चाहता, तो अब आप क्या करें, उसको पकड़ करके उसको मारना शुरू कर दें कि जी मुंह खोलो मैं तुम्हारे मुंह में खाना डालूं, राइट। तो ऐसा आप किसी को नहीं खिला सकते ना, बिल्कुल उसी तरीके से जो कोई बात सुनना ना चाहे तो अब आप उसको पकड़ पकड़ करके ना उसके कान में बातें नहीं उंडेल सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना लोग जो हैं अवाम उन्नास के अंदर इन चीज़ों की तलब नहीं है, लोग नहीं सुनना चाहते इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को डाल तो किया दिया गया है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं सोशल मीडिया पर भी हैं जी, फेसबुक पेजेस भी हैं जी, व्हाट्सएप के ऊपर भी खूब मैसेजेस चलते रहते हैं, और माशाल्लाह वेबसाइट्स भी बेशुमार हैं अब तो, राइट। ऑडियो बयानात भी हैं और वीडियो बयानात भी हैं और सब कुछ है, राइट। लेकिन उससे क्या होता है, ठीक है, अगर कोई ना सुनना चाहे, कोई ना उसको समझना चाहे, तो अब आप उसको फोर्स फीड तो नहीं कर सकते ना ये चीज़ें। तो ये कसूर हम हर वक्त जो मौलवियों का कसूर तलाश करते हैं ना कि जो मौलवियों ने आम क्यों नहीं किया, तो भाई हम जरा अपने ऊपर भी तो देखें ना, हमने कभी कोशिश भी करी उनसे पूछने की और उनसे सुनने की? तो इस देखने के बस दावियों को बदलने की जरूरत है, ठीक है। चले सोशल मीडिया इंटरेक्शन पे जो है ना, वो जो लड़के लोग बैठे होते हैं ना, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। वो अपने तौर पे जिहाद कर रहे होते हैं लेकिन करना कराना उन्होंने कुछ नहीं होता, वो बेअमल किस्म के सोशल मीडिया इंटरेक्शन जो होती हैं कुछ नहीं। खाने में कंट्रोल करना मुश्किल काम होता है, इसका भी कोई इलाज या तरीका है? हाँ हाँ, क्या आपने पूछ लिया जी, इसका इलाज तरीका मैं है तो बहुत सारी बातें कहने की, लेकिन लंबी बात हो जाएगी। एक तो यह है कि भाई आपके कंट्रोल में भी कुछ होना चाहिए ना, कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर आप कुछ कंट्रोल कर भी सकते हैं। अब आपके कंट्रोल में कुछ भी ना हो तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? लेकिन बहरहाल, अगर आपके माशाल्लाह घर में खानसामा हैं और काम करने वाले लोग हैं, और आपका काम सिर्फ इतना है कि जी आप टेबल पर बैठें और जितना आपने खाना है उतना खाएं और फिर उठ जाएं, ठीक है, और फिर अपने काम से लग जाएं जो आपका काम है, ठीक है, तो फिर जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप बहुत थोड़ा सा खाएं, ठीक है। तो अब इस अगर ऐसी आपकी कैफियत है तो फिर आप ये जो खाने की रग़बत है ना अपने अंदर, इस रग़बत के ऊपर मेहनत कर सकते हैं कि आपकी ये रग़बत कम हो जाए, ठीक है। तो ये जो रग़बत खाने की है ना, ये कम करने के लिए जो है वो मशायख जो है बाकायदा मुराकबात बताते हैं, मुराकबा, ठीक है। ये जो मुराकबा करते हैं ना आज के दौर में का सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये 1400 साल पहले वाला सोल्यूशन नहीं है, उस जमाने में मुराकबे वगैरह कोई नहीं करता था, ठीक है। आज के दौर के जो हालात हैं उनके तहत क्या सोल्यूशन हमारे डॉक्टर हजरात भी, आज के दौर में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको पैनाडोल देते हैं ना, तो भाई 1400 साल पहले कोई बीमार पड़ता था तो उसको पैनाडोल तो नहीं देते थे, राइट। तो भाई ये सुन्नत तो नहीं है पैनाडोल देना, तो भाई उस वक्त जो हालात डिफरेंट थे, ठीक है, उस वक्त की बीमारियां भी डिफरेंट थी और उस वक्त की अद्वियात भी डिफरेंट थी, उसी तरीके से आज की बीमारियां भी डिफरेंट हैं, आज की अद्वियात भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इस वजह से आज के दौर में मशायख जो है मुराकबात बताते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक मुराकबा जो है वो मौत का मुराकबा होता है, ठीक है, कि मौत का तसव्वुर करो बैठ करके थोड़ी देर, कि जी तुम मर गए हो, तुम्हारे फिर कफन दफन का इंतजाम हो रहा है, फिर तुम्हारा जनाजा पढ़ा जा रहा है, फिर तुम्हें कब्र में छोड़ा जा रहा है, फिर कब्र में मुनकर नकीर आ रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं। तो मुराकबा मौत जब मशायख बताते हैं और वो इंसान करता है ना, तो उसके अंदर से रग़बत कम होती है खाने की, ठीक है। उसी तरीके से हमारे सिलसिले में जो मशायख नक्शबंद हैं तो वो ये अल्लाह के नाम का जिक्र का मुराकबा बताते हैं, तो इसमें जब इंसान कसरत करता है ना तो उसकी रग़बत जो होती है वो अल्लाह की तरफ इतनी बढ़नी शुरू हो जाती है कि उसकी रग़बत फिर खाने पीने से कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब वो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो खाना छोड़ करके उठ जाए, ठीक है। तो ये आजकल के हल हैं जो कि आज के रूहानी डॉक्टर्स बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे रोक लेते हैं, कोई मजीद सवाल हो तो इंशाल्लाह कल उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।